आगे है जी सूरत फुसिरत, जिसका दूसरा नाम हामीम सजदा है। 41 नंबर की सूरा है और इस बारे में इसकी 46 आयात हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें फरिश्तों का जम जाने वालों यानी इस्तकामत वालों को खुशखबरियां देना भी है और इंसानी अज़ा की गवाहियां भी हैं। चलिए सूरत फुसिलत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलु मिनर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 15 है, आयत 1 से 8। कुराने हकीम की सिफात। हामीम ये उतारी हुई बड़े मेहरबान बड़े रहम वाले की तरफ से ऐसी किताब जिसकी आयतों की वाज़ह तफसील की गई है इस हाल में कि कुरान अरबी में है, इस कौम के लिए जो जानती है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। फिर भी इनकी अक्सरियत ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और उन्होंने कहा कि तू जिस चीज़ की तरफ हमें बुला रहा है, हमारे दिल तो इससे पर्दे में हैं और हमारे कानों में गिरानी है। ज़रा बताइए ये बातें कौन करता है? तकब्बुर से भरा हुआ, खुद को बड़ा और किताब को और किताब पढ़ाने वाले को छोटा समझने वाला शख्स। और हम में और तुझ में एक हिजाब है। अच्छा तो अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। जब दिल में बात कहने वाले की इज्जत नहीं होती ना, तो इंसान उस बात की भी इज्जत नहीं करता। कहते थे तेरे साथ तुम्हारी वेवलेंथ ही नहीं मिलती। आज भी लोग दीनदारों के बारे में कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं, इनको क्या पता जी, ये तो मौलवी हैं जी, ये तो ऐसे जी, ये तो वैसे जी। अल्लाह कहते हैं इनको जवाब दीजिए, आप कह दीजिए मैं तुम जैसा ही इंसान हूँ। हाँ फ़र्क क्या है कि मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही है। बस तुम इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और इससे गुनाहों की माफ़ी चाहो। और इन मुशरिकों के लिए बड़ी ही खराबी है जो ज़कात नहीं देते। नोट करिएगा, हर जगह लफ्ज़ मुशरिक नॉन मुस्लिम के लिए नहीं आता। यहाँ ज़कात ना देने वाले और आखरत के भी मुनकर रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और भले काम करें, इनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। तो क्या पता चला इन 3 आयतों में? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कुरान। ये किताब अल्लाह का रहम है, अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए किताब हिदायत है। कुरान अल्लाह की रहमत है, इसको समझना अल्लाह ने आसान कर दिया। आयत 4 से 5 की शान नज़ूल में उतबा बिन रबिया का नाम आता है। उनके बारे में आयतें नाजिल हुई जब उसने अल्लाह के नबी को कुछ चीज़ों की तरगीब देनी चाहिए ताकि शिर्क के खिलाफ तबलीग करना छोड़ दे। आज भी ये ट्रिक इस्तेमाल होता है और कुछ मुसलमान इसमें फंस जाते हैं। अल्लाह हमेशा हक बात पे जमने वाला बना दे। फिर आयत 5 में दिलों पर पर्दे पड़ने की वजूहात नोट कीजिए। बाहमी ज़िद्द, तासुब, दूसरे को अहम ना समझना, किबर। ये जो तनकीद ना सुनने वाला रवैया हमने शुरू में समझा है ना, वो भी यही होता है। इसको मुझसे हसद है, ये जलती है, बस ऐसे वो है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिलों पे पर्दे ना डाले। फिर आयत 7 ज़कात की अहमियत पे है कि इसके ना देने वाले को यहाँ मुशरिक कहा गया। माल में बढ़ोतरी और नशो नुमा का ज़रिया है और तज़किया नफ्स का भी ज़रिया है। हमने क्या सीखा? किताब का इल्म और फहम हासिल करना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, इससे माफ़ी चाहनी है, नेक अमल करने हैं, किताबुल्लाह से मुंह नहीं मोड़ना, ज़कात देनी है और आखिरत का इनकार नहीं करना। आगे जी रुकू नंबर 16, आयत नंबर 9 से 18। ज़मीनों आसमान की तख्लीक, ये टॉपिक है। कुल आइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक। आप कह दीजिए क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो कि तुम इसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन पैदा कर दी। सारे जहानों का परवरदिगार वही है और इसने ज़मीन में और इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दी और इसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों की ग़िज़ा की तजवीज़ भी इसी में कर दी, सिर्फ 4 दिन में, ज़रूरतमंदों के लिए यकसां तौर पर। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं सा था। बस इसे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज़ किया कि हम बखुशी हाजिर हैं। क्या पता चला कि ये मखलूकात भी सेंस रखती हैं। ये अलग बात है कि हम इनकी बात नहीं सुनते और नहीं समझते, और ये भी अल्लाह के आगे झुकी हुई है। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے۔ اب یہ روح گرداں ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک یعنی عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادی اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی، ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک ہر نبی کی قوم کا ایک ہی طرح کا کوشچن آنسر، اور ہر نبی کی مین دعوت سو عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہی دعوت ہمیں یہ قرآن بھی دے رہا ہے اس وقت۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ اچھا کیا کہتے؟ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب قوم عاد نے تو بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے؟ وی آر سپر پاور، سپر سول پاور، من اشد منا قوا۔ یہ مان ہر دور میں لوگوں کو رہا، وہی اللہ کے رسولوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے، آج بھی وہی لوگ اللہ کے نبی کے پیغام کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں جن کو اپنی بڑائی کے ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، بلاخر ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے قوم سمود، سو ہم نے ان کی بھی راہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، فاستخب العمیٰ۔ اللہ ہدایت کے موقع دے رہا ہے، اب ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی۔ کچھ لوگ بعد میں دوبارہ گمراہیوں میں چلے جائیں گے، چھوڑو رمضان تو ختم ہوا، دور قرآن تو پورا ہوا، اتنا بھی نہیں، اتنے بھی نہیں، اور خدا ناستہ ہماری کوئی دوست ہماری ساتھی ہمیں پھر واپس پلٹا دے۔ بڑے کیئرفل رہیے گا، اب آپ بہت قیمتی ہو گئے ہیں۔ جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا، اور ہاں ایماندار اور پارسا لوگوں کو ہم نے بال بال بچا لیا، یعنی نہ بچتے اگر اللہ نہ بچاتا۔ کیا عذاب آیا تھا آیت 16 میں دیکھیے، سخت تند ہوا، اللہ کا عذاب تھی سر سرا، وہ ہوا جس میں آواز پائی جائے اور نہ ہی ساتھ پے در پہ ایک دم مسلسل، سات راتیں اور آٹھ دن تک یہی ہوائیں ان پر چلتی رہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، ناحق بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی، کائنات کی ہر چیز کی طرح اللہ کا فرما بردار بننا ہے، حق کا جانے کے بعد اندھے نہیں بننا، گمراہی اور بدعملی سے بچنا ہے۔ آگے ہیں جی ہم اپنی عدالت میں، دیکھیے انسانی اعضاء کی گواہیاں۔ ذرا سا پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، جو کچھ دیکھ سکتے ہیں، بازو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں، شیشہ ہے تو چہرہ دیکھ لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یو اون دیم؟ نو، دے آر یور اسپائس۔ یہ گھر کے بھیدی لنکا ڈھائیں گے۔ کبھی گھر میں ایک ملازم بڑا پرانا ہو جاتا ہے، ہم اس پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کی باتوں میں آ کے بہہ گیا، اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ میرے سے جھوٹ نہیں بول سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان ساری باتوں میں اس رکوع کا ترجمہ سنیے ذرا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے اور ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، ذرا سکن کو دیکھیے اپنے، کتنا کمپلیکس ہے، ہمارے ہاتھ کالے ہیں، گورے ہیں، سخت ہیں، یہ ہے وہ ہے، ذرا سا دیکھیے ان ہاتھوں کو، اس دن قیامت کے دن کیا کہہ رہا ہوگا انسان۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، یہ تم کیوں بڑھ بڑھ کے بول رہے تھے، کیا ضرورت تھی بولنے کی، چپ نہیں رہ سکتی تھی تم، یہ باتیں دوسروں کو بتانے کی ہوتی ہیں، مہمانوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، میری ناک ٹبو دی، یہ ٹون ہے ذرا۔ وہ جواب دیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت یعنی قوت گویائی تھی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کی اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالی اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہیاں دیں گی، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان میں سے بہت ساری چیزوں سے یا بہت سارے اعمال سے अल्लाह ताला बेखबर है, यानी इतने खुल गए कि फासिक बन गए कि सरेआम करते थे गुनाह और तुम्हें लोगों की भी शर्म नहीं आती थी। तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया और बिलाखिर नुकसान वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नम ही है, और अगर ये माफ़ी के खासगार हों तो वो माफ़ी भी ना दिए जाएंगे। नो एक्सक्यूज मी, चुप, आज कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। वजह, इतना बंदा गिल्ट फील करे, तो वजह लिख लीजिए, सुन लीजिए, आय 25। और हमने इनके कुछ हम नशीन मुकर्रर कर रखे थे, दोस्त, बुरी सोहबतें, बुरी सहेलियाँ, जिन्होंने इनके अगले पिछले अमाल इनकी आंखों में खूबसूरत बना रखे थे, जो इनके इनके गुना अच्छे दिखाती। छोड़ो ना, क्या हो गया, आओ बातें करते हैं। क्या कुरान कुरान, कोई ज़रूरत नहीं कोर्स पढ़ने की, क्या फजूल बातें, जॉब करो, चलो काम करो, ये करो वो करो। यानी करीब होता है बंदा अच्छे फैसले के और उसकी दोस्त उसको कान से पीछे पकड़ के, चलो बाजार चलते हैं, नहीं नहीं मुझे जाना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बाद में पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना। अरे कुछ नहीं होता, सब पता है, सब बेकार बातें हैं, ऐसी बातें करते हैं लोग, कुछ नहीं, अल्लाह ने ऐसी माफ़ करना है। ये बातें थी, ये है खूबसूरत बनाना। और इनके हक में भी अल्लाह का कौल इन उम्मतों के साथ पूरा हुआ जो इनसे पहले जिन्न और इंसानों की गुजर चुकी हैं, यकीनन वो नुकसान पाने वालों में हुए। आय 22 की शान नज़ूल है। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से कहते कि काबा के पास दो कुरैशी और एक सकफ़ी, यानी कबीलों के नाम है, या एक कुरैशी और दो सकफ़ी मर्द बैठे हुए थे। इनके पेट बहुत मोटे थे लेकिन अकल से कोरे। एक ने इनमें से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह हमारी बातों को सुन रहा है? दूसरे ने कहा, अगर हम जोर से बोले ना तो सुनता है, और आहिस्ता बोले तो नहीं सुनता। तीसरे ने कहा, अगर अल्लाह जोर से बोलने को सुन सकता है तो आहिस्ता बोलने को भी सुन सकता है। उस पर यह आयत नाजिल होती है कि अल्लाह को तुम्हारा सब पता है। ये बुखारी की रिवायत है 4817। क्या सीखा? आखिरत के हालात को जानना है, आज़ा और जिल्द की गवाही को हमेशा याद रखना है, अपने जिस्म के एक एक कोस को गुनाहों से बचाना है, अल्लाह को अपने अमाल से बाखबर समझना है और बुरे अमाल को अच्छा नहीं समझना। अब इसके बाद खूबसूरत सी आयतें, रुकू 18, 26 से 32, 26-32, इस्तकामत दीन का खुलासा। वकाल अल्लज़ीना कफरू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी वल्गौ फ़ीह। और ये सारे प्रोपेगंडे हैं जो आज भी आपको दिख रहे हैं, कुरान की आवाज़ों को दबा दो, हक की बातें दबा दो। कैसे? और कुफार ने कहा कि इस कुरान की सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त और बेहुदा गोई करो, क्या जबकि तुम गालिब आ जाओ। ये सुनना छोड़कर ये फजूल चीज़ जो ऐड में चला है ये वो देखना शुरू कर दें, क्या कभी ऐसा नहीं होता? आप अच्छे भले यूट्यूब पे सुन रहे हैं और बीच में कोई ऐड आ गए, और ख़ास तौर पे जब मोनेटाइज की होती हैं चीज़ें। कई दफ़ा आप एक लेक्चर सुनने के लिए कुरान खोल लें, कोई भी ऐसा चैनल खोलें, और फजूल किस्म के ऐड और गाने, आप ज़रा दूर बैठे होते हैं तो बीच में एडवर्टाइज में आपको म्यूज़िक सुना रहे हैं। ये क्या है? ये यही है, तासीर ख़त्म हो जाए। आज तक आप देखिए कि हज़ारों के लाखों मिनट है हमारे यूट्यूब पे, और एक पैसे का भी, कोई एक रुपया भी यूट्यूब से हमें नहीं आता। वजह क्या है? आज आप उनसे पैसे लें, कल आपके लिए वो लेक्चर सुनना मुहाल करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी इन चैनल्स और इन सारी चीज़ों के, इनके खर्चों को कंट्रोल करना। लेकिन कई लोग कहते भी हैं, कई पूछते भी हैं, कितने पैसे आते हैं आपके पास, इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है। फॉलोअर्स लेने हैं, पैसे लेने हैं, तो फिर तो और भी बड़ी चीज़ें हैं ना। तो याद रखिए कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। आप मास्टर्स हैं जो IT के, उनसे समझें, सीखें। आप उनके अंदर जाकर ऑप्शंस को बंद करें, आप सेटिंग्स में जाएं, ऑप्शंस में बंद करें, ये नहीं सुनना, ये नहीं देखना, और जो भी कर सकते हैं। ये एक साइड का नुकता है, लेकिन आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना है। कहते थे तुम गालिब आ जाओ, वहीं से गंदी चीज़ें। और एक बच्ची ने अपने बिगाड़ की वजह सुनाई थी एक जगह, और वो कह रही किसी अच्छे काम के दौरान एक गलत ऐड आया था और प्रॉन फिल्मों पर चली गई वो, और आपको क्या पता ये मासूम जाने क्या देखती हैं। अल्लाह बचा के रखे। बस यकीनन हम इन काफिरों को सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे और इन्हें इनके बदतरीन अमाल का बदला भी ज़रूर ज़रूर देंगे। और अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा यही दोजख की आग है जिसमें इनका हमेशगी का घर है। और ये बदला है हमारी आयतों का इनकार करने का। और काफिर लोग कहेंगे कि हमारे रब, हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक तो दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया था, ताकि हम इन्हें अपने कदमों तले डाल दें, रौंदे इनको ठुड्डे मारे। ये है, जब बंदे को बस नहीं चलता ना, तो उसको जो सामने आए वो कर देता है। कहते हैं अल्लाह आज मुझे वो लोग दिखा जिन्होंने मुझे बेकाया था, जिन्होंने मुझे कुरान क्लास से निकाल कर पता नहीं किन फजूलियात में डाल दिया था, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे सख्त अजाब में हो जाएं। वाकई जिन लोगों ने कहा इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, जिन लोगों ने कहा हमारा रब परवरदिगार अल्लाह है फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम न करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए जाते हो। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे, जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, ये सब तुम्हारी जन्नत में मौजूद होगा। गफूर रहीम माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी के है। ये है पिन पॉइंट ऑफ दीन, इस्तकामत और सहाबा कराम। ईमान लाकर कभी शिर्क की तरफ नहीं पलटे, कभी गुनाह की तरफ रागिब नहीं हुए, तौहीद इलाही पर ताउमर कायम रहे और अल्लाह की इताअत पर जमे रहे। आप सिर्फ इन आयतों की तफसीर सुन लें, ऐप खोलिए और सूरत चूज़ कीजिए या आयतें चूज़ करें, कम अज़ कम आपको 1 से 1.5 घंटे की तफसीर मिलेगी इन आयतों। फेवरेट मोस्ट आयतें, लेकिन आज के मुसलमान के पास इस्तकामत की कमी है, छोटी छोटी बात पे अपने दीन से पीछे हो जाता है। अल्लाह हमें बचा के रखे। क्या सीखा कि इस्तकामत इख्तियार करनी है, अल्लाह को अपना रब मानना है, फरिश्तों की हम नशीनी की दुआ करनी है, कुरान को गौर से सुनना है और इसकी तालीम हासिल करनी है। पहले रिजल्ट बताया इनाम इस्तकामत का, और अब उसका तरीका बताया कि हासिल कैसे होती है। रुकू नंबर 19, 1933 से 44। बुराई का जवाब अच्छाई से दीजिए। वमन अहसन कौल मिम्मन दअा इलल्लाह वअमिल सालिहन, और इससे ज़्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दूर करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसे हो जाएगा जैसे दिली दोस्त लिखे। दुश्मनों को दोस्त बनाने का नुस्खा, और अल्लाह हमें तनकीद बर्दाश्त करने वाला बना दे। और ये बात इन्हें नसीब होती है जो सब्र करें, और इसे सिवाय बड़े नसीबे वालों के कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत ही सुनने और जानने वाला है। और दिन रात और सूरज चांद भी इसी की निशानियों में से हैं। तुम सूरज को सजदा ना करो ना चांद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह के लिए करो जिसने सबको पैदा किया। अगर तुम्हें इसी की इबादत करनी है, फिर भी अगर ये किब्र और गरूर करे तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नज़दीक हैं वो तो दिन रात इसकी तस्बीह बयान करते हैं और किसी वक्त भी नहीं उकताते। हम तो नहीं थक गए, कोई उकताया हुआ तो नहीं आप में से? अल्हम्दुलिल्लाह। और इस अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तू ज़मीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम इस पर मी बरसाते हैं तो वही तरोताज़ा होकर उबरने लगती है। जिसने इसे ज़िंदा किया वही यकीनी तौर पर मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं, उनको उल्टे मानी पहनाते हैं, जो कुछ हमसे मख्फी नहीं बतलाओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है, या जो अमन और अमान के साथ क़यामत के दिन आए तुम जो चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रखा है। जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बाद इससे कुफर किया वो भी हमसे पोशीदा नहीं। ये बड़ी बवक्कत किताब है जिसके बस बातिल फटक भी नहीं सकता, ना इसके आगे से ना इसके पीछे से। ये है नाजिल करदा हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से। आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों से भी कहा गया, यकीनन आपका रब माफ़ी वाला और दर्दनाक अजाब वाला है। और अगर हम इसे आजमी जुबान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों ना की गई। ये क्या कि आजमी किताब और आप अरबी रसूल, ये आयत साबित करती है कि हर एक को अपनी अपनी जुबान में कुरान को समझना चाहिए। आप कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में तो बहरापन और बोझ है, और जिन पर अंधापन है ये वो लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज जगह से पुकारे जा रहे हैं। इनको लगता ही नहीं कि ये बात हमारी है। आयत 33 पे हदीस है अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आपने फरमाया मौज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक इसकी मग़फ़रत कर दी जाती है। हर तर और खुश्क चीज़ जो इसे सुनती है और जो इसकी तस्दीक करती है, और अजान सुनकर बाजमात नमाज पढ़ने वाले के लिए 25 नेकियाँ हैं। हम 27 कहते हैं, इस रिवायत में 25 है और ये मुस्नद इसहाक बिन राहुया की किताब है और 141 है। क्या सीखा? अल्लाह की तरफ दावत देनी है, बदी को नेकी से दूर करना है, दावत देने के लिए सब्र करना है, शैतान के शर से अल्लाह की पनाह में रहना है, अल्लाह की आयात को उल्टे मानी नहीं पहनाने, और अल्लाह के कलाम का इनकार नहीं करना। और आगे आयत 45 से 46 आखिरी आयत है, हर शख्स अपने किए का बदला पाएगा। वलकद आतैना मूसल किताब, यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, बस इसमें भी इख्तलाफ किया गया, और अगर वो बात पहले से ना होती कि जो आपके रब की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है, तो इनके दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता। ये लोग तो इसके बारे में सख्त बेचैन कर देने वाले शक में हैं। जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफ़े के लिए करेगा, और जो बुरे काम करेगा इसका वबाल भी इसी पर है, और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। क्या पता चला? किताब में इख्तलाफ, खामखा इख्तलाफात खड़े किए जाते हैं। अल्लाह ने वजाहत के लिए ये किताब दी थी, लोग इसमें इख्तलाफात ढूंढते हैं, फिर किताब के बारे में शक व शुबे का शिकार हैं। ऐसे लोगों को क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि इस किताब का बुनियादी पैगाम क्या था, लोगों को अल्लाह से जोड़ना। और बशिरु वला तुनफ़िरु, क्या सीखा? नेक अमल करना है, बदी से बचना है, शक में मुबतला नहीं होना, और किताब में इख्तलाफ नहीं करना। अल्लाह हमसे राज़ी हो। यहाँ पारा पूरा हुआ, लेकिन हम सूरत तक चलेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए पारा नंबर 25, दौरे कुरान 2023 2023, पारा नंबर 25, टॉपिक है इलैही युरद्दू, उसी की तरफ लौटाया जाता है। इसमें अजमत सहाबा, अपना ताज दूसरों के सर पे रखना, हम इस पे बात कल के सेशन के शुरू में करेंगे। अभी हम डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे सूरत फुसिलत को, आयत नंबर 47 से 54, रुकू नंबर 1। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, इलैही युरद्दु इल्मुस्सा, क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। और जो जो फल अपने शगुफों से निकलते हैं, और जो मादा हमल से होती है, और जो बच्चे वो जनती है, सब का इल्म इसे है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुश्रिकों को बुलाकर दरियाफ़ फरमाएगा, मेरे शरीक कहाँ हैं, वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे कह सुनाया कि हम में से तो कोई इसका गवाह नहीं। साफ मुकर्रर हैं, साफ मुकर्रर हैं। आपने इस आयत में तीन चीज़ों का रब देखा है, क़यामत को साबित करने के लिए फल का शगुफे से निकलना, और माँ के पेट से बच्चे का निकलना। क्या तुम्हें ये नहीं बताता कि कब्र के पेट में से भी लोग निकल आएंगे? इतने इनकार की ज़रूरत ही क्या है? और जिन जिन की परस्तिश इनसे पहले करते थे, वो इनकी निगाह से गुम हो गए, और इन्होंने समझ लिया कि अब इनके लिए कोई बचाव नहीं। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं, और अगर इसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाए तो मायूस और नाउमीद हो जाता है। और जो मुसीबत इसे पहुँच चुकी है, इसके बाद अगर हम इसे किसी रहमत का मज़ा चखाएं, तो वो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था। आई डिज़र्व दिस, यस, ये मेरे साथ नहीं होना तो और किसके साथ होगा, और फुला फुला। और मैं तो ख्याल ही नहीं कर सकता कि क़यामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब के पास वापस गया भी, तो भी यकीनन मेरे लिए इसके पास बड़ी बेहतरी है। यकीनन हम इन मुनकरीन को इनके अमाल से खबरदार करेंगे, और इन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं, तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है, और जब इसे मुसीबत पड़ती है, तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। आप कह दीजिए, भला ये तो बतलाओ, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया हुआ हो, फिर तुमने इसे ना माना, बस इससे बढ़कर बहकाव और कौन होगा जो मुखालफत में हक से दूर चला जाए। अन करीब हम इन्हें अपनी निशानियाँ आफाक में यानी आलम में दिखाएंगे, और ख़ुद इनके अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक इन पर खुल जाए कि हक यही है। क्या आपके रब का हर चीज़ से वाकिफ और आगाह होना काफ़ी नहीं? यकीन जानो, ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं, याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का अहाता किए हुए है। क्यामत कब आएगी? हामीम सजदा की आयत 47 पे एक रिवायत है, बुखारी में 3688, अनस बिन मालिक से रिवायत है। एक अराबी ने आकर अल्लाह के नबी से पूछा कि क्यामत कब आएगी? आपने फरमाया, तुमने क्यामत के लिए तैयारी क्या की है? उन्होंने अर्ज़ किया, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आपने फरमाया, अच्छा, फिर तुम्हारा हशर भी इन्हीं के साथ होगा जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। अनस कहते हैं, हमें इतनी खुशी हुई इस बात से जितनी किसी और चीज़ से नहीं। क्यों भला? नबी से मोहब्बत में सच्चे थे। कहते हैं, जितनी आपकी हदीस सुनकर हुई है। आपने कहा कि मैं भी नबी सल्लम से और अबू बकर और उमर से मोहब्बत रखता हूँ, और इनसे अपनी इस मोहब्बत की वजह से उम्मीद रखता हूँ कि मेरा हशर इन्हीं के साथ होगा अगर से मैं इन जैसे अमल नहीं कर सका। अल्लाह हमें अच्छे अमाल करके अच्छे लोगों का साथ दे। फिर आयत 49 में कुछ मुसीबत और आजमाइश की बात थी, तो दो रवैये हैं, नोट कर लीजिए। रब की रहमत से मायूस ना होने वाले, रब से ना उम्मीद होने वाले, दो मुख्तलिफ किरदार। बाज़ मुसीबत में अल्लाह से गिले शिकवे करते हैं, कोई मुसीबत में भी शुक्र करता है। कुछ मुसीबत को अल्लाह ताला की नाराज़गी समझते हैं, कुछ मुसीबत को दर्जात की बुलंदी का ज़रिया समझते हैं, कुछ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कमज़ोर कर लेते हैं, कुछ मजबूत कर लेते हैं। आपने मैंने इनमें से वो काम करना है जो कि अच्छे काम थे। नेमत मिलने के बाद नेमत देने वाले से मुंह नहीं मोड़ना, अल्लाह के सिवा दूसरों को नहीं पुकारना, मायूस नहीं होना, नेमतों पर शुक्र करना है, क़यामत के कायम होने पर यकीन रखना है, और कुरान के बरहक होने पर यकीन रखना है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।